ओम शांति, ओम शांति। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, आपके सामने ही है। क्या समय था सेशन का? सेशन का टाइम क्या था? 4 बजे का, समझ ही गए होंगे। और जो आएंगे वो अपने आप समझ ही लेंगे। तो जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है कि खास करके जब आप ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में जब आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर वो अक्सर करके बात करना चाहते हैं, जिसमें से एक ये भी टॉपिक है। खास करके कुछ टॉपिक्स जो वो बार बार कहते हैं इसके ऊपर हमारी कंपनी में कराओ, वो होता है पहला स्ट्रेस के ऊपर वो लोग चाहते हैं, दूसरा वो कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स नहीं कहते वो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर वो बात करना चाहते हैं, तीसरा जो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं करने के लिए वो है कम्युनिकेशन के ऊपर, चौथा अगर सीनियर मैनेजमेंट टीम होती है तो वो कहते हैं लीडरशिप के ऊपर कुछ कराइए। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं। और बाकी जो लोगों को कई बार दिक्कत आती है वो टाइम मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप आसानी से किसी भी जगह पर करा सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है वो इसकी डिमांड कभी ना कभी आसानी से करेगा कि इसके ऊपर आप कुछ कराओ हमको। तो आज वही विषय लेकर के आए हैं। ये सेशन अगर आप चाहें तो आराम से 2-3 घंटा करा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि इसमें फिर आप कुछ एक्टिविटीज, कुछ चीजों को लेते हुए आराम से 2-3 घंटा कराया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 घंटा ही है तो हम शॉर्ट में देखेंगे कि कैसे कैसे चीजों को इसमें कवर कर सकते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप अपना भी इसमें कर पाएंगे फिर। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसी से ही शुरू करते हैं। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले हर कोई क्या कहता है आज के समय पर, आज के समय पर सबसे पॉपुलर डायलॉग क्या है? हाँ, टाइम ही नहीं है। किसके पास नहीं है? ऑफिसर के पास, जूनियर के पास, या किसके पास नहीं है? एक रिक्शा वाला रिक्शा में खाली बैठा हुआ होगा, खाली बैठा है, और उसको बोलिए भाई कहीं चलना है, नहीं चल सकता। क्यों भाई? टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ पर लगा हुआ है? फोन में, फोन में लगा हुआ है, और उसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है उसमें कि वो भी क्या कहता है, टाइम नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास टाइम है, लेकिन टाइम होते हुए भी बहुत कॉमन हो गया है ये बोलना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत कॉमन हो गया ये बोलना अभी। जैसे स्ट्रेस हो या ना हो, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, बहुत काम है, बहुत टेंशन है, बहुत कॉमन हो गया बोलना। शायद हम उसका अर्थ भी नहीं समझ पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉमन डायलॉग हो गया इसलिए हम भी उसको शब्द को बोल रहे हैं। ठीक इसी तरह से ऐसा नहीं है कि टाइम है नहीं, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है ये बोलने की कि टाइम नहीं है। तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम सबके लिए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। बहुत दुनियावी डायलॉग है ये, सभी को तो 24 घंटे मिलते हैं, कॉमन डायलॉग है ना, कॉमन लाइन है जो हम सभी बोलते हैं कि सभी के पास 24 घंटे हैं। तो सभी के पास 24 घंटे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनेज करो ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैनेज करो ना। अभी कैसे मैनेज करें? 24 को 24.5 नहीं कर सकते, 24 के 23.5 भी नहीं कर सकते। मैनेज करो, क्या मैनेज करें? कहा जाता है ना, मैनेज करो ना, आपके पास समय नहीं है, थोड़ा तो निकालो ना समय, थोड़ा तो मैनेज करो ना चीजों को। क्या मैनेज करें, कैसे मैनेज करें टाइम को? अपने आप को मैनेज करना। लेकिन बोलने में क्या आता है, अपने टाइम को थोड़ा सा हमारे लिए निकालो, यही कहते हैं, अपने टाइम थोड़ा सा हमारे लिए भी निकालो। शब्दों में एक्चुअली प्रॉब्लम आ गई है, और क्योंकि शब्दों में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है हमें एक्चुअली मैनेज क्या करना है। तो टाइम इज कॉन्स्टेंट, 24 घंटे कॉन्स्टेंट हैं, सब कुछ कॉन्स्टेंट है, 60 मिनट कॉन्स्टेंट है. अभी उसको कैसे हमें अपने साथ डील करना है उस टाइम के साथ, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर भी मैं इसका भी एक्सप्लेन करूंगी कि मैनेजमेंट और डीलिंग में भी क्या अंतर है, फिर दोनों में भी अंतर है. तो टाइम सबके लिए कॉन्स्टेंट है, अब करना क्या है, टाइम मैनेज जो हम बोल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में एक्चुअली हमको क्या करना है, जो भाई ने उत्तर दिया, एक्चुअली क्या करना है, उससे पहले क्या करना है. देखिए, यहां पर हम आए ज्ञान सरोवर, हम आए ज्ञान सरोवर में आकर के हमें एक काम दिया गया. अभी आज सुबह ही मुझे किसी ने बोला कि कोई गेस्ट आने वाले हैं, आप उनको भी मिल लेना, फिर कोई जगह जाना था आप वहां चले जाना, फिर उसके बाद सेशन की तैयारी कर लेना, फिर ये कर लेना. तो मेरे को भी बताया जा रहा था ये कर लेना. अब जो कर लेना वाली चीज थी वो सब क्या था, काम था ना, थी. इसका मतलब क्या था एक्चुअली, हमें टाइम को, हमें ये समझ में आ गया, हम टाइम को तो मैनेज नहीं कर सकते. अब टाइम हम किस में लगा रहे हैं पूरा दिन, काम में, जिसको हम सेवा बोलते हैं, लेकिन दुनिया में क्या बोल रहे हैं उसको, काम करने में. अब पूरा दिन इंसान काम कर रहा है तो क्या कहा जाता है, अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकालो, अर्थात पूरे दिन के काम में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकालो. तो एक्चुअली जब हम बोल रहे हैं टाइम मैनेज करना है, तो एक्चुअली हमें क्या मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, टास्क जो हमारे सामने काम है उसको हमें मैनेज करना है. राइट बात है. हमारे सामने 10 काम है, अब उस 10 कामों में से हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कौन सा पहले कौन सा बाद में. करते ही हैं, सब करते हैं, लेकिन अक्सर करके काम फिर भी रह जाते हैं ना, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, तो सबके काम रह जाते हैं फिर भी, क्योंकि पूरा जो 24 घंटे हैं, पहली बात तो हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, पूरे 24 घंटे को कोई यूटिलाइज नहीं करता, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया. दूसरी बात, जिस चीज को हमें ऑर्गेनाइज करना था, हमारे काम को हमें ऑर्गेनाइज करना था, उस काम को ऑर्गेनाइज करने में भी मेहनत लगी. अब वो काम सिर्फ काम तो नहीं है, अभी एग्जाम्पल देती हूँ, सेंटर पर आपके पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, आपको पता है परसों वो फंक्शन है. अब वो परसों फंक्शन के लिए आपने तैयारी शुरू की, आपके पास लिस्ट एक आपने बनाई, मेरे को ये काम उस समय करने हैं, क्या आपको अकेले करने हैं? हाँ जी या ना जी? अकेले नहीं करना, आपके पास एक अपने ही सेवाधारी, अपने ही भाई बहनों की एक आप टीम बनाएंगे. अब जब आपने टीम बनाई तो आपको अकेले करना नहीं है, लेकिन उनके साथ मिलकर उनसे करवाना भी है. राइट? तो टाइम मैनेजमेंट में टाइम के साथ साथ टास्क मैनेजमेंट भी हुआ, और टास्क के साथ साथ पीपल मैनेजमेंट भी हुआ. करना पड़ रहा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि और हम क्या कह रहे हैं, टाइम मैनेज करो. टाइम नहीं, टाइम के साथ बहुत कुछ और मैनेज करना पड़ रहा है, तब जाकर के वो टाइम मैनेज होगा. अगर आपने पीपल मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो टाइम कम पड़ेगा ही पड़ेगा. अगर आपने चीजों को ऑर्गेनाइज रूप से नहीं किया, टाइम कम पड़ेगा ही पड़ेगा. और क्योंकि हम ह्यूमन हैं, और हमें ह्यूमन होते हुए लोगों के साथ डील करते हुए काम करना है. हम क्या है? उल्टी गाड़ी चला रहे थे. सीधी गाड़ी क्या है? पहले लोगों के साथ डील करना है, फिर काम के साथ डील करना है, और फिर टाइम के साथ डील करना है. कि अब हम बोलेंगे भाई बहनों ये काम करना है, और हमारे पास 2 ही दिन है, 2 ही दिन है, ये काम करना है, अब ये टीम बनाते हैं. क्या हो जाएगा? थोड़ा सा उल्टा हो गया. हमारे पास ये टीम है, इस टीम के साथ मुझे 2 दिन के अंदर ये काम खत्म करना है. इजी हो गया, क्योंकि सबसे पहले दिमाग को शांत कर दिया कि मेरे पास काम करने के लिए 10 लोग हैं. अगर वहां से शुरू करेंगे मेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं, तो पहले से क्या शुरू हुई, प्रॉब्लम शुरू हुई. यहां पर सिर्फ 2 दिन है, अब लिस्ट बनाई, अरे बाप रे इतने सारे काम हैं, और टेंशन बढ़ी. आप उस टेंशन के साथ अब किसको बुलाऊं, है ना, उल्टा चल रहे हैं हम। इसको हम रिवर्स कर दीजिए, मेरे पास बढ़िया एक 10 लोगों की टीम है, ये काम है, बांटना शुरू कीजिए, 2 दिन में प्रोग्राम होना है, उल्टा कर दीजिए, टाइम मैनेज हुआ। अब ये सारा जो हमने मैनेज किया, इसके पीछे एक्चुअली हम किसको मैनेज कर रहे थे, शुरुआत कहां से की, जो भाई जी बता रहे थे, कहां से शुरुआत की, एक्चुअली हमने शुरुआत की सेल्फ मैनेजमेंट से। मैंने पहले खुद के अंदर क्लैरिटी लेकर आई, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रूप से इस प्रोग्राम को करना है, तब जाकर के वो टाइम मैनेजमेंट तक हम पहुंच पाते हैं। तो एक्चुअली हमें उल्टा चलना है, खुद से मैनेजमेंट शुरू करना है। ये आप लोगों को आराम से बता सकते हैं कि ओपोजिट मत चलिए, आपका टाइम कभी भी मैनेज नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, कई बार लोग कहते हैं सिस्टर आप हमारा थोड़ा सा कुछ प्लान शेड्यूल कर दो ना, कैसे कैसे हम करें। कई बार हमारी बहनें भी हमको कह देती हैं, दीदी आप बताओ ना पहले कौन सा काम करें। अच्छा बता देंगे आज, तो कब तक बताएंगे, कब तक बताएंगे। थोड़े दिन बाद हम भी क्या कहते हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा पहले करना है। अरे इतने समय से तो बता रहे हैं, कर लो ना, पता तो है ना, है ना, बोल देते ना फिर हम। और जो आप बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपने कई बार बता दिया है। लेकिन वो व्यक्ति डिपेंडेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उसको मैनेज करने के लिए सिखाया नहीं, आपने उसको परोस करके दे दिया, ये काम पहले कर लो, ये दूसरा कर लो, ये तीसरा कर लो। उसने अपनी बुद्धि चलाई, उसने बुद्धि चलाई, उसने क्या कहा, मुझे दीदी ने कहा है ये काम पहले करना है, बात खत्म। अब उसके सामने दूसरा काम हो भी रहा होगा ना, कई बहनें ऐसी होती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बहनें नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं, अब उनके सामने दूसरा काम हो भी रहा होगा ना, उसमें मदद भी नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, नहीं नहीं मुझे दीदी ने वो ही बोला है। वो समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि कि हमें दोनों चीजों को भी मिलकर के हम कर सकते हैं। हो सकता है उसमें मुझे हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। अरे कोई माइक ठीक से नहीं रखा हुआ, मैं चलते चलते ये तो बता सकते हो, माइक ठीक से रख दो, ये तो बता सकती हूँ ना। हम कह गए नहीं 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 मुझे दीदी ने बस ये बोला ही नहीं है करने के लिए, ये तो दूसरी बहन को दिया है। आपने एक्चुअली खुद ही कहीं ना कहीं, हम बॉसेस या जो भी हम ऊपर होते हैं, हमने कहीं ना कहीं क्या किया, सामने वाले की बुद्धि को आराम दे दिया कि आपको मैनेज नहीं करना, हम आपको बता रहे हैं वैसा करते जाओ। लेकिन थोड़े समय के बाद हम ही परेशान होने लगते हैं कि आप इतने समय से कर रहे हो, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। और वो समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने उनको वो मैनेजमेंट करना, सेल्फ मैनेजमेंट करना सिखाया ही नहीं। कि आप खुद अपनी लिस्ट बनाओ कि पहले क्या करूं, दूसरा क्या करूं, तीसरा क्या करूं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को सिखाएं, उनको लिस्ट बना के ना दें। हम में से कोई भी यहां बैठे हैं जो किसी का टाइम टेबल बना सके, बैठा है कोई किसी का टाइम टेबल बना सके, कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि हर एक के लिए प्रायोरिटीज भी अलग हैं, हर एक के लिए सेवा भी अलग है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम उसको सिखाएं कि आप अपना टाइम टेबल खुद कैसे बनाओ। हम सिखाते हैं ना अमृत वेला कैसे करो, मुरली में कैसे पहुंचो, टाइम पर पहुंचो, उससे पहले आधा नाश्ता बना लो, आधी सफाई कर लो, जो भी है आपने एक बार सिखा दिया, लेकिन कुछ अपने आप भी मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट करना है या सेल्फ कंट्रोल करना है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेजमेंट शब्द का अर्थ बता सकता है कोई, हम मैनेज मैनेज जो कर रहे हैं, ऐसे ही हम स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? हाँ जी, ऑर्गेनाइज इट, व्यवस्था। कोई और कुछ बताना चाहेंगे? प्रबंधन। एक्चुअली इसका सही शब्द जो है वो है प्रबंधन, इंग्लिश में डेफिनेटली ऑर्गेनाइज करना है। अब ये स्टेज हमको मिली, इस स्टेज पर मुझे कहा गया आप चीजों को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया, किसको ऑर्गेनाइज किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, पानी का ग्लास कहाँ आना चाहिए, इसको ऑर्गेनाइज किया, इन सब चीजों को मैंने ऑर्गेनाइज किया। टेबल देखी, सेंटर में होनी चाहिए, ये सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया, करते हैं ना, किया ना, ये सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया। अब जो फ्लावर्स लगा रहे हैं क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे हैं, कहीं एक ही कलर ज्यादा तो नहीं आ रहा, कहीं एक कलर कम तो नहीं आ रहा, सब चीजों को देख के ऑर्गेनाइज किया, इतना हम सबको आ गया। लेकिन ये बताइए, जिन चीजों को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जड़ है या चेतन है? जड़ है, जड़ है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, उसको मैनेज करना पड़ रहा है। करेक्ट, करेक्ट, मैनेज करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो जड़ है। हम क्या हैं? और हम अपने लिए भी क्या कह रहे हैं? हम अपने आप को मैनेज करें, हम जड़ नहीं हैं। ये तो इस तरह से हो गया कि बाढ़ आ रही है, हम उसको रोक रहे हैं, बाढ़ आ रही है हम उसको रोक रहे हैं, कैसे, दीवार लगा लगा के उसको रोक रहे हैं। एक टाइम आएगा कि पानी आएगा ही आएगा। हम मैनेज करते रहेंगे तो सदा मैनेज ही करेंगे, हमें एक्चुअली मैनेजमेंट नहीं करना है। हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हमें अपने आप को समझना है, और जहां पर मैनेजमेंट होता रहता है वहां पर प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। जो झगड़े होते हैं वो किस में होते हैं? मैनेजमेंट में ही झगड़े होते हैं। तो मैनेज एक्चुअली हमें खुद को नहीं करना, हम झगड़ों से अलग हैं तो हमें क्या करना है? सेल्फ कंट्रोल करना है, अपने आप को समझना है, हमें मैनेज नहीं करना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब पुअर मैनेजमेंट होता है कि कहीं पर भी कोई चीज ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? सबसे पहला है पुअर प्लानिंग। आपने अगर प्लानिंग नहीं की है तो वो चीज मैनेज नहीं होगी। एक कंपनी है होंडा कार्स, जिसका नाम कभी होंडा सीएल होता था, उस कंपनी में कभी भी चले जाओ, मतलब आज तक तो उसकी सिचुएशन ऐसी है, शायद थोड़ी कम हुई है, लेकिन एक टाइम था कभी भी उस कंपनी में चले जाओ, उसके किसी मैनेजर, सीनियर मैनेजर या किसी भी अबव लेवल के व्यक्ति से मिलेंगे, कहाँ बिजी हैं भाई साहब, मीटिंग में हैं, या दूसरा एक ही चीज होती थी, हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। पूरा दिन प्रेजेंटेशन बनाते रहते थे, पूरा दिन प्रेजेंटेशन बना रहे। मैंने कहा काम कब करते हो? कह रहे यही काम है हमारा, प्रेजेंटेशन बनाते रहना। तो उस समय पर मेरा भी संकल्प चलता था, पूरा दिन प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो काम कब करोगे? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपके प्रेजेंटेशन अर्थात अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो प्रेजेंट करोगे क्या? तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना इजी होगा उस चीज को सामने वाले को समझाना। अगर आप यहां से क्लियर नहीं है तो आप कितना ही पेपर पे लिख लो, सामने वाले तक डिलीवर कर पाएंगे? आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, यहां पे जितनी भी एक्टिविटीज हम लोगों ने करवाई वो समझना आसान था या मुश्किल था? आसान था, मुश्किल था? क्यों? प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां क्लैरिटी होगी तो आपकी जुबान में क्लैरिटी आएगी, और वो जितनी क्लैरिटी आएगी सामने वाले के लिए समझना उतना आसान होगा। तो यहां से वो जो शुरू हो रहा है ना, उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो अगर प्लानिंग भी आप कर रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, तो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो आसान हो जाएगा। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हमारा ध्यान केंद्रित पूरी तरह से नहीं होता। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि एक नॉर्मल इंसान जब कुछ भी सुन रहा होता है तो सुनते समय अप्रोक्सीमेटली 70% उसका वहीं खत्म हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 70% उसका वहीं खत्म हो जाता है। केवल 30% हम अपने साथ ले जा पाते हैं, और उस 30% में भी अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ना हो तो फिर क्या कहते हैं, मुरली थी तो बहुत अच्छी बट याद कुछ नहीं है। वो यही कारण है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं एक बारी यामाहा कंपनी में गई, इट वाज अ फुल डे प्रोग्राम, 8 घंटे का वहां पर प्रोग्राम था, सुपरवाइजर्स थे वहां के, तो पूरा दिन प्रोग्राम कराया उनको, सब करने के बाद एप्रिसिएशन मिला, सब कुछ ठीक है आ गए। नेक्स्ट मंथ फिर से उन्होंने प्रोग्राम रखा, बाय चांस मेरे को ही जाना पड़ा, और बाय चांस की ही बात है कि सेम ग्रुप सामने बैठा था। तो जब मैं पहुंची वो सारे भी देख के खुश हो गए, अरे वाह सिस्टर आप वापस आ गए, पिछली बारी भी जो सेशन था ना मैं पूरा दिन पता ही नहीं चला कहां निकल गया, बड़ा मजा आया हमको। तो मैंने ऐसे कैजुअली पूछ लिया, मैंने कहा क्या सुनाया था? कहते बड़ा मजा आया। मैं कहा सुनाया क्या था? नहीं सच्चे बहुत ही अच्छा था, सुनाया क्या था? क्यों? क्योंकि दो चीजें हुई उनके साथ, तो दो चीजें हुई उस समय पर, सुन रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं। हम तो बाबा की मुरली अलग रूप से सुनते हैं, लेकिन वो सुन किस ले रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने बिठा दिया है हमें सुनना, इसलिए हम सुन रहे हैं। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो वो चीज अंदर जाएगी भी नहीं। तो जहां पर पुअर मैनेजमेंट है वहां पर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसलिए हम कई बारी आपस में भी जब किसी को कोई काम सौंपते हैं तो हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना बोलते हैं, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं वो बहन का थोड़ा ध्यान इधर उधर जा रहा है तो हम क्या कहते हैं, अरे ध्यान से सुनो फिर बाद में पूछोगी। अगर वो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है तो भी आपका टाइम मैनेजमेंट गलत होने ही वाला है। तीसरा है अलाउइंग इंटरप्शंस। हम क्या करते हैं, काम सेवा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उसके बीच में हम इंटरप्शंस को परमिट करते हैं कि हाँ आ सकते हैं। मैंने एक छोटी सी चीज देखी जो आजकल हो रही है, जो मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती। क्या होता है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मुरली ज्यादातर हम बहनें भी सुनाना शुरू कर दिया है। अब ऑनलाइन मुरली चलती है, कई बार क्या होता है ऑनलाइन चल रही है मुरली, बहन खुद सुना रही है मुरली, और क्या हो रहा है बीच में अगर फोन आ गया तो फोन अटेंड कर रही है, स्क्रीन थोड़ा ऑफ कर दिया, पता नहीं म्यूट कर दिया, और साथ में मुरली के बीच में फोन चल रहा है। क्या सही है, क्या सही है? अच्छा मुरली के बीच में छोड़ो, कोई सेशन करा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसके बीच में आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा काम को, एक एक्स्ट्रा इंसान को आपने अपनी लाइफ में, अपने टाइम मैनेजमेंट में इंटरप्ट करने का लाइसेंस दे दिया। जहां आपने लाइसेंस दिया वो आज नहीं रोज करेगा, क्योंकि आपने लाइसेंस दिया है उसको। कई लोगों की आदत होती है बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। जब तक आप उनको बोलेंगे नहीं, बहन या ऑफिस में है अगर, कि एक्सक्यूज मी सर आई एम डूइंग दिस वर्क राइट नाउ, प्लीज डोंट इंटरप्ट। कई लोगों को वो भाषा उसके बिना समझ नहीं आती, तो वो बोलना पड़ेगा आपको कि प्लीज मैं ये काम कर रही हूं अभी आप रुकिए। आपको इंटरप्शन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको नहीं रोकेंगे आपका दिमाग क्या होगा, डाइवर्ट होगा या नहीं होगा? हमारा टाइम जो हम कर रहे थे वो प्रोलोंग हो जाएगा, सामने वाले का काम होता जाएगा। नहीं, रोकिए उसको। बाबा कहते हैं कि हम ना शब्द ना बोलें, लेकिन कई चीजों में हमें इस तरह से समझदारी से ना बोल करके टेम्परेरी उसको साइड करना चाहिए, तभी हमारा पूरा दिन का जो मैनेजमेंट है वो एक्यूरेटली होगा। देन इट इज लैक ऑफ क्लियर गोल्स। मुझे एक्चुअली करना क्या है हम उस चीज में भी क्लियर नहीं है। होता है ऐसा, हमको किसी ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया करने के लिए, लेकिन मुझे ही नहीं पता मुझे उसमें करना क्या है। जैसे मुझे याद आता है लास्ट ईयर ओआरसी में प्रेसिडेंट मैम को आना था, और जब उनको आना था तो आशा दीदी ने हमारी टीम बनाई और हमारी मीटिंग्स की, और हम सबको आप ये करना, आप ये करना, आप ये करना, सबको सौंप दिया। और उस समय पर मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए करने के लिए जो मैंने कभी नहीं किए, मुझे पता भी नहीं है करना कैसे है उसको। तो मैं हैरान थी और मैं भी हां जी हां जी करती जा रही हूं, मुझे भी नहीं समझ में आया मैंने कैसे हां जी बोला। वो बोलते जा रहे हैं आप ये भी कर लेना, मैं हां जी, ये भी कर लेना, मैं हां जी। बाद में सोचा मैंने कहा करना कैसे है इसको, ये होगा कैसे, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं है उस बारे में कि काम होगा कैसे ये। लेकिन मैंने अपने आप के साथ बैठी क्लियर किया कि ये चीज के लिए मुझे इस भाई की मदद लेनी पड़ेगी, इस चीज के लिए मुझे इस बहन की। मैंने पहले अपने आप को क्लियर किया कि इस काम को करना कैसे है। अगर मैं ही क्लियर नहीं हूं कर पाऊंगी? और मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, वो सारी चीजें जो दीदी ने कही थी मैंने वो सब कुछ किया और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, उससे कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इतने सालों में जो सोचा भी नहीं था, मेरे से दीदी ने वो सब सेवाएं करवाई, बाबा ने करवाई लेकिन करवाई, क्यों? क्योंकि मैंने हाँ बोला और उसके बाद पहले अपने गोल को क्लियर किया कि मुझे करना कैसे है। उस जगह पर आकर के मैं वापस जाऊंगी, वहां पर फिर सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपके सामने कोई नई चीजें आती हैं, जो हम कल भी शेयर कर रहे थे, जब हमारे सामने नई चीजें आती हैं तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते और वहां पर हमें फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब चीजें बढ़ने की संभावनाएं पूरी पूरी होती हैं। वहां पर फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, एक नई चीज में आप जा रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा, तो वहां पर सेल्फ कंट्रोल की, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। देन पुअर डेलीगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेलीगेट करना नहीं आता चीजों को, हमें लगता है जो लीडर्स होते हैं सिर्फ वो डेलीगेट करते हैं, नहीं, हम भी डेलीगेट करते हैं, लेकिन वो डेलीगेशन अगर हम खुद ही अपने आप को चेक करें तो बहुत बार वो पुअर डेलीगेशन होता है। पुअर डेलीगेशन समझते हैं? पुअर डेलीगेशन समझ रहे हैं? पुअर डेलीगेशन मतलब आपने डेलीगेट किया, आपके पास कोई काम आया, आपने उसको आगे दिया, लेकिन या तो ऐसे इंसान को दिया जो कैपेबल नहीं है, जिसके बारे में आपको खुद भी डाउट है कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, प्लस पूरी तरह से बताया भी नहीं कि करना क्या है। यहां पर या तो ये हो कि आप कॉन्फिडेंट हो ये बहन कर लेगी, तो आपने उसको डेलीगेट किया, लेकिन क्लैरिटी से डेलीगेट किया, यहां दोनों चीजें हो जाती हैं, ना आपने पूरी तरह से बताया ना ही पूरी तरह से आपको उस पर विश्वास है, तो पुअर डेलीगेशन हुआ। अब जब सामने वाला करके आएगा तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप सेंटर से सुबह सुबह आपको कहीं जाना है, आप निकलने लगे सेंटर से, ठीक है, अब सेंटर से निकलते निकलते आपके पास कोई बहन आई है नई नई, और आपने उसको बोला कि बहन मैं ना आज जा रही हूं और मैं शाम तक आऊंगी, टाइम नहीं बताया, नोट कीजिएगा मेरी लाइन को, अब नोट कीजिएगा, मैं जा रही हूं, मैं शाम तक वापस आऊंगी, आप मेरी कबड़ खोलना, कबड़ की जो चाबी है वो वहां पर रखी है, वहां से निकाल लेना, कबड़ खोल लेना, कबड़ खोल करके थर्ड ड्रॉअर के अंदर वाले में पीछे एक कपड़ा रखा है, वहां पर एक पर्स रखा हुआ है, वो पर्स निकाल लेना, वहां से उतने ही पैसे निकालना, निकाल करके एक भाई आएगा उसको वो पैसे देना, और साथ में एक लिस्ट रखी हुई है जो कि किचन में रखी हुई है, किचन का जो वो दाल का डब्बा है उसके नीचे रखी हुई है, वहां से निकाल करके उसको वो लिस्ट दे देना, साथ में जो पैसे निकाले थे वो भी दे देना, और वो जो पैसे और वो सामान लेकर के जब शाम को आएगा वो व्यक्ति, तो उसको फलाने फलाने डब्बे में ऑर्गेनाइज कर देना, साथ में कपड़े जो है ना फलानी जगह पर रखे हैं उसको प्रेस कर देना, एंड इट्स अ लॉन्ग 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 लिस्ट। आपने जो बोला वो गलत बोला क्या? वो गलत बोला? गलत तरीके से बोला? हाँ बताए, निकाल लो मेरी गलती, निकाल लो मेरी गलती, मैं ही गलत हूं। एक्चुअली गलती कहां हो रही है? हो रही है या नहीं हो रही है? अब यहां पर समझने की बात क्या है, आपने जो बोला आपके माइंड में वो पिक्चर पूरी है, आप क्लियर हो आपको क्या कराना है, लेकिन आपने जिस बहन को बुलाया वो सोती सोती उठ करके आई थी, वो अपनी पूरी कॉन्शियसनेस में, मीन्स जब आपने बोलना शुरू किया तो वैसे देख रहे हैं, अच्छा ये करना है, आधा तो वो समझ नहीं पाई, और अगर गलती से बेचारी ने हिम्मत करके बीच में ये पूछ लिया कि दीदी क्या बताया था, देखा, इतनी सी बात समझ नहीं आती आप लोगों को, अब बेचारी या तो चुप करके करेगी जितना उसको समझ में आया, पूरा दिन कर कराने के बाद पहले तो रिमाइंडर डालती रहेगी क्या था, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, और पूरा दिन करने के बाद जब आप शाम को आएंगे तो आपको दिखेगा आधा अधूरा या उल्टा हुआ हुआ काम, और फिर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं बोलूंगी अब। होता है क्या? किया पुअर डेलीगेशन। डेलीगेट करना गलत नहीं है,
आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाली जो आत्मा है ना, ये ऑफिसेस में भी होता है, हर जगह होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले आत्मा की कैपेसिटी मेरी जितनी नहीं है। एक आशा दीदी इसमें हमको कई बार एक एक्सपीरियंस सुनाते हैं अपना। वो कहते हैं कि जब मैं पांडव भवन में सेवा करती थी आशा दीदी, तो कहते हैं मैं बहुत फास्ट थी, आज भी बहुत फास्ट है, आप सब जानते हैं उनको, शी इज वेरी फास्ट। कहती मैं बहुत फास्ट काम करती थी, कहती और एक भाई वहां पर होता था जो बहुत स्लो था। अभी प्योरिटी बनती थी उस समय पे, तो उसके ऊपर स्टिकर लगाने होते थे एनवेलप पे, तो भाई स्टिकर लगाने में भी बहुत देर करता था। तो आशा दीदी थोड़ी रेस्टलेस होते थे कि क्या इतना देर क्यों लगा रहे, तो काम फटाफट करना भाई। तो उन्होंने एक दिन जाकर के भाई साहब को बोला कि भाई साहब ये भाई जो है ना बिल्कुल ठीक से काम नहीं करता, इतना स्लो है ये भाई, इसका कुछ करो। तो भाई साहब ने आशा दीदी को जो बात बोली बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, मैं आज तक उस बात को याद रखती हूँ। भाई साहब ने दीदी को बोला, बहन जी अगर वो आपके जितना ही फास्ट होता, आपके जितना ही समझदार होता, तो आप उस सीट पर क्यों होते? सही बात है ना, फिर आप उस सीट पर क्यों होते? तो मैंने इस बात को अंडरलाइन कर लिया अपने जीवन में कि हम किसी भी आत्मा के साथ इंटरेक्शन में आए, हमें ये समझना जरूरी है कि वो आत्मा किस लेवल पर होगी और उसके साथ किस प्रकार से आपको इंटरेक्ट करना है। अब एक पांचवी क्लास के बच्चे के साथ हम कैसे बात करते हैं? अरे बेटा आप ये कर लेना, ये खा लेना बेटा, हम क्या कह रहे हैं? अरे वो तो पांचवी क्लास का बच्चा है ना, हमें क्या पता यहां पर कौन सा पांचवी क्लास का बच्चा है, हमें कैसे पता? तो हमें हमेशा ही अपनी जो डेलीगेशन है, जो कन्वर्सेशन, उसको उस लेवल पर समझना पड़ेगा कि सामने वाला हमें अंडरस्टैंड कर पाए, हम क्या कहना चाहते हैं, क्लैरिटी हमारे अंदर, सामने वाले में क्लैरिटी मत ढूंढिए, यहां पे क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए, सामने वाला समझ पाए। एंड लास्ट इज इम्प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने ऑलरेडी ले लिया कि हमारा इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होते, इस कारण से भी होता है। साइकिल देखते हैं कि पुअर मैनेजमेंट का साइकिल क्या होता है, और उस पुअर मैनेजमेंट में भी जब वो सेल्फ पर आती है कि मेरा सेल्फ पुअर मैनेजमेंट क्या है, तो वो किस तरह से होता है। सबसे पहले पुअर सेल्फ मैनेजमेंट, जहां पर मैनेजमेंट गलत हुआ वहां पर क्या होगा? अनफिनिश्ड टास्क, काम पूरे होंगे नहीं। जहां काम पूरे नहीं हुए वहां क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा यहां पे, जिसको हम दूसरे शब्दों में स्ट्रेस बोल देते हैं, टेंशन बोल देते हैं। जैसे जैसे टेंशन बढ़ा, काम तो हुआ नहीं था, तो टास्क जो है एक्यूमुलेट हुए, बढ़ते गए टास्क, काम तो बढ़ता ही जाएगा ना, काम तो कम नहीं होगा, काम बढ़ ही रहा है। जैसे जैसे काम बढ़ा, टेंशन ऑलरेडी हो रहा था, अब हमारा व्यवहार भी कैसा होगा? पॉजिटिव, मीठा बोलेंगे। क्या हो रहा है? अंदर बढ़ता जा रहा है, टैंक फुल होता जा रहा है, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा ना। तो क्या हुआ? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, काम बढ़ते चले गए, एक्यूमुलेट होते चले गए, अब उसके साथ साथ हमारा व्यवहार चेंज हुआ, और जैसे हमारा व्यवहार चेंज हुआ क्या हुआ? क्या हुआ पढ़िए, लूज कोऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा व्यवहार जो है क्या करता है, हमारे को दूसरों से सहयोग लेने के लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है। हम सोचते हैं हम जैसा भी बोले सामने वाला हमें सहयोग करेगा ही करेगा, होगा क्या? उसको पता है क्या आप कितने टेंशन में हो? उसको पता है? उसको तो क्या पता है, ये व्हाइट साड़ी वाली ब्रह्मा कुमारी है, इनको तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, उनको तो यही पता है। सही बात है, चाहे नॉन बीके हो, चाहे आपका स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उनको ये पता है ये व्हाइट साड़ी वाली बीके बहन है, ये तो बोल ही नहीं सकती, पीछे क्या चल रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही बिहेवियर चेंज हुआ, आपको लोगों से सहयोग मिलना अपने आप कम हो जाएगा। सहयोग मिलना कम हुआ, अब काम वैसा ही था, वापस और टेंशन बढ़ी, क्योंकि अब जो सहयोग करने वाला था वो भी नहीं कर रहा, अब टेंशन और बढ़ी। क्या होगा? रात को नींद आएगी? रात को नींद आएगी नहीं, हो गया पूरा साइकिल, पूरा दिन ऐसे ही बीतेगा। क्या कर रहे हैं? हमने अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आप को चलाने का तरीका नहीं सीखा। हमें उस समय पर अपने आप को रोकना आना चाहिए। तो वहां पर जहां हम रोकना सीख जाएंगे, अपने आप हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम जो अप्रोच आज तक करते आ रहे थे वो थी आउटसाइड इन अप्रोच, जो कि क्या है, अगर बाहर की चीजें ठीक होंगी, जो दुनिया कहती है, अगर ये सब ठीक होगा ना तो मैं ठीक रहूंगा ही रहूंगा, बोलते हैं ना लोग, ये व्यक्ति ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मेरा काम ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, जबकि है क्या ऑपोजिट है, मैं ठीक होऊंगा तो ये काम ठीक होगा, ये व्यक्ति का व्यवहार ठीक होगा, मेरा टेंशन खत्म हो, वो सब चीजें मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, बाहर की अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहां पर बहुत क्लियरली बताया कि मेरा खुद से ही मैं बीच में हूं, मेरे इर्द गिर्द जो घूम रहा है उसको मेरे को यहां से चलाना है, वहां से यहां नहीं चलाना है, क्योंकि चला भी नहीं पाएंगे, कितने भी कोशिश कर लीजिए, आप लोगों को बहुत इजीली समझा सकते हैं और उनको समझ में आएगा कि अगर आप पूरा दिन कमाई कर रहे हो और कमाई करके आप शाम को घर पहुंचते हैं, आपकी पत्नी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, जवाब दीजिए, आप समझ लीजिए आप वहीं हैं, क्या क्या जवाब देंगे आप। आप पूरा दिन जॉब करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे जॉब करके घर पहुंचे, आपकी पत्नी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, प्यार से बात करें, प्यार से बाद में तो बात करेंगे, पहले कम से कम क्या करें, एक स्माइल तो दे। आपने जैसे दरवाजा खोला हट परे, अब ऐसे घुसेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मैं तो सुबह से इनकी इंतजार कर रही हूं और यहां तो उल्टा मेरे ऊपर ही। चलो एक बारी को वो समझ जाएगी कि आज परेशान होंगे, कल भी परेशान होंगे, कब तक परेशान रहोगे, क्योंकि ये तो रोज का हो गया। अब उनको आप पूछिए कि आपका परिवार, आपकी पत्नी बच्चे जो भी हैं, आपसे एक्चुअली क्या चाहते हैं, या आप जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जवाब आएगा पैसे के लिए कर रहे हैं। अच्छा, पैसे से क्या मिलेगा, हमारे पास भी है इसका उत्तर, क्या मिलेगा, क्या कहते हैं नॉन बीकेस, खुशी मिलेगी, पैसा मिलेगा तो मेरी पत्नी खुश रहेगी, मेरे बच्चे खुश रहेंगे। आप खुश नहीं हो, आपके घर वाले खुश रह सकते हैं, बताइए। हम अपने सेंटर की बात करें, अगर हमारे सेंटर पे 3 बहनें रहती हैं, एक ना खुश है, 2 बहनें खुश रह सकती हैं, रह पाएंगी नहीं ना, जब जब उसको देखेंगे क्या लगेगा, उस बेचारी को पैर में दर्द है, फ्रैक्चर हो रखा है, बेड पर बैठी हुई है, दर्द में करहा रही है, आप खुश रह सकते हैं, 2 बहनें रह पाएंगे नहीं ना। सेम इसी तरह से अगर हम खुद ठीक नहीं हैं तो मेरा परिवार ठीक नहीं रह सकता, मेरे साथ जो सोशल संबंधों में लोग आ रहे हैं वो ठीक नहीं रह सकते, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रह सकती। पूरा साइकिल है, अपने आप में सब घूम रहा है और मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि मेरे को अब क्या करना है, खुद को ठीक रखना है, और मैं ठीक रहूंगी तो मेरा सामान, काम, धंधा, लोग, टाइम, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। ये एक बहुत अच्छा साइकिल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 4 चीजें हैं जो हम लोग दिन भर में करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे लिए, 4 टास्क है हमारे पास। एक है अर्जेंट, जिसको आजकल हमारे लिए बोलना बहुत आसान हो गया, पूरा दिन क्या करते रहते हैं, अर्जेंट जाना है, अर्जेंट ये काम करना है ना, अर्जेंट अर्जेंट करते रहते हैं। तो एक तो है हमारे लिए अर्जेंट जो हमको करना है, दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको करना ही है। एक है अर्जेंट, दूसरा है इम्पोर्टेंट, तीसरा है नॉट इम्पोर्टेंट, और चौथा है नॉट अर्जेंट। ये 4 में हम लोग रहते हैं। जैसे हम लोगों को बताते हैं ना, 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं, कौन से समझ ही नहीं आ रहा, कौन क्या बोल रहा है। 4 प्रकार के थॉट्स लोगों को बताते हैं ना, जनरली आप लोगों से पूछेंगे तो लोग क्या कहते हैं, नॉन बीकेस, 2 प्रकार के थॉट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक्चुअली हम पूरा दिन पॉजिटिव में भी नहीं रहते, नेगेटिव में भी नहीं रहते, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं ना कि दो और प्रकार के थॉट्स होते हैं, कौन से? नेसेसरी और इम्पोर्टेंट, है ना। इसी प्रकार से हमारा भी जो पूरा टाइम का साइकिल चल रहा है, इस पूरे दिन में हम चार ही प्रकार की चीजों में, टास्क में अपना टाइम लगाते हैं। पहला है अर्जेंट, दूसरा नॉट अर्जेंट, तीसरा इम्पोर्टेंट एंड चौथा नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसा ही है। अब अगर इस साइकिल में देखिए कैसे साइकिल घूम रहा है, पहले हम लेते हैं अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। जो अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट वाला है उसमें क्या हो रहा है, अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट वाला जो है इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स है हमारे सामने, ये काम करना है लेकिन शॉर्ट टर्म है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फोन की घंटी बज रही है, अब फोन उठाना जरूरी है या नहीं, अर्जेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट है, देख के पता चलेगा ना, देख के पता चलेगा कि ये अर्जेंट कॉल है या नॉट इम्पोर्टेंट कॉल है। दरवाजे की घंटी बजी, इम्पोर्टेंट है सॉरी नॉट इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है, अर्जेंट है, उसको आपको खोलना ही पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते हो उसके लिए। इसी तरह से अपने सामने जो टारगेट्स आ रहे हैं उसको भी हम देखें, हमारे लिए जो टारगेट्स हमारे तो ब्राह्मणों के हिसाब से, उनके लिए नॉन बीके, इसके नॉन बीके के हिसाब से टारगेट हैं, वो जो टारगेट्स उनके सामने हैं उसको क्लैरिफाई कीजिए कि क्या ये मेरे लिए अर्जेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस यहां पर हमने दिखाया है आपको, हमने अर्जेंट के साथ नॉट अर्जेंट नहीं डाला, नॉट इम्पोर्टेंट मतलब कहां बिल्कुल अर्जेंट वाली बात हम कर रहे हैं और कहां बिल्कुल ही उसको नहीं करने की जरूरत वाली बात कर रहे हैं। दोनों काम हम एक साथ कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम दोनों में एक साथ होते हैं, कभी एकदम अर्जेंट वाला काम करेंगे और कभी क्या करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, अरे थक गए बिल्कुल, या क्या करना शुरू करेंगे फिर दूसरे वाले साइकिल में जाएंगे जो कि नॉट इम्पोर्टेंट भी है और नॉट अर्जेंट भी है, उसमें क्या करके करेंगे जाके फोन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, आजकल वो यूट्यूब पे वीडियोज आ रहे हैं, बस वो चलाते जा रहे हैं उसको। इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, लेकिन हमने क्या किया, उस अर्जेंट वाली फील्ड में से निकल करके बीच में से थोड़ा सा समय निकाला, अब क्या किया, स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, दुनिया में टीवी देख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बाबा हमको भी कहते हैं कि समय व्यर्थ मत गवाओ, हम क्या कर रहे हैं इधर उधर की बात करके, और हम क्या कहते हैं उसके बाद, चलो थोड़ा कर लिया ना, अब रिलैक्स हो गए। आई एम सॉरी, हम रिलैक्स नहीं हुए, हमने उस अर्जेंट को और ज्यादा अर्जेंट बना दिया अभी, क्योंकि हम जानबूझ करके दूसरी फील्ड में उतर गए थे जो कि नॉट अर्जेंट था और नॉट इम्पोर्टेंट था। मेरे लिए कहीं पर भी दिन में वो करना लिखत में नहीं है कि करना ही चाहिए, इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। हमने बिल्कुल गलत क्राइटेरिया उठाया अपने काम को, अपने दिमाग को हल्का करने का। दिमाग हल्का एक्चुअली कब होता है, काम को लटकाने से या काम खत्म करने से? एक्चुअली काम खत्म करने से दिमाग हल्का होता है, और हमने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया, ऐसे कर लो थोड़ा दिमाग हल्का तो हो जाएगा। वहीं पर हम उस काम को खत्म कर लेते तो दिमाग वैसे ही हल्का हो जाता और टाइम वेस्ट भी ना होता, अगले दिन के लिए प्रोलोंग भी ना होता। तीसरा जो है फिर इसमें, नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अब इस साइकिल में अगर आप देखें तो स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली, अपने परिवार के साथ सही अच्छा समय बिताना, स्पिरिचुअल इनपुट, अंदर कुछ स्पिरिचुअल चीजें लेना, परस्यूइंग अ हॉबी, किसी भी तरह की हॉबी को परस्यू करना, हमें ड्राइंग, पेंटिंग, ज्ञान योग करना, जो भी किसी भी तरह का, जो भी किसी को पसंद हो, वो क्या है, हमारे लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। हमने जिसको स्क्रॉलिंग को और उस चीज को इम्पोर्टेंस दिया हुआ था ना, उसकी जगह एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्या था, हम उस हॉबी पे टाइम लगाते तो कुछ नया डेवलप करते, कुछ नया सीखते, लेकिन हमने क्या किया, ओपोजिट कर दिया। अच्छा, अभी वही जो हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जो हम एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, उसके बजाय हम कोई बढ़िया सी क्लास भी तो सुन सकते हैं, सुन सकते हैं या नहीं, कोई अच्छी सी क्लास भी सुन सकते हैं, जरूरी नहीं है चलो दादियों की नहीं सुनी, चलो कुछ और नहीं सुना, चलो मुरली नहीं, कुछ और भी तो अच्छा सुन सकते थे ना, जो मेरे लिए कुछ अपलिफ्टमेंट का काम करता। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ एंटरटेनमेंट में उसको बिता दिया। एंड लास्ट इज इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। इस इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में क्या है, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन हम ऑफिस के हिसाब से प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है, और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए भी सेम ही हालात है। रोज के रोज ईमेल चेक करना ही पड़ता है हमको, हम चाहे ना चाहे, मधुबन जाएं, हम केरला जाएं, हम कहीं चले जाएं, हमें भी डेली ईमेल चेक करना ही पड़ता है, हम रुक नहीं सकते उसके बिना। हम यहां पर बैठे हुए भी वहां के ऑफिस का काम करते ही हम रुक नहीं सकते, हमें करना है। कई बार हम किसी सेंटर पर जाते हैं तो कई बार हमें बहनें कहती हैं अरे यहां तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, जो आपका काम है वो आपको करना है, जिम्मेवारी जिम्मेवारी है, बस 10 मिनट भी निकल जाए बीच में तो भी वो क्या होता है, यहां से हल्के हो गए, वहां वाले भी हल्के हो गए, है ना। तो वो जो हमें काम करना है वो हमें करना है। तो ईमेल्स है, मीटिंग्स है, टारगेट्स हैं, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट भी आता है और कई बारी इम्पोर्टेंट के साथ वो अर्जेंट के लिस्ट में भी आता है। अभी मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक ऐसा 4 कॉलम अपने डायरी में बनाइए, और 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगी क्योंकि समय हमारे पास कम है, आप इसको आराम से लोगों को सोचने का मौका दे सकते हैं इसमें, कि आप आराम से इसमें लिखो, सोचो ये चारों में आपके लिए कौन से में कौन सा आता है, आपके लिए कौन सा काम ऐसा है जो नॉट इम्पॉर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है, बट फिर भी हम उसको कर देते हैं, करते ही हैं। कौन सा काम ऐसा है जो हमारे लिए अर्जेंट है और नॉट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम वो है जो हमारे लिए अर्जेंट भी है इम्पॉर्टेंट भी है, और कौन सा काम ऐसा है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है। कोशिश कीजिए, सोच करके लिखिए कि ऐसा कौन से काम है जिसमें मैं अपनी ऐसी एनर्जी लगा रही हूं जो ये चारों साइकिल में मेरे लिए खरा उतरेगा। 1 मिनट का समय लीजिए, थोड़ा सा इसको इंटरैक्ट कीजिए, अपने आप से इंटरैक्ट कीजिए इसमें। जिसके पास पेपर पेन नहीं है लेकिन कम से कम सोच तो सकते हैं ना कि मेरे लिए क्या है वो बातें। जिसका होता जाए थोड़ा एक बार ही हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा। अगर अभी उत्तर नहीं भी लिख पाए इट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन बाद में इसका उत्तर जरूर सोच के लिखिएगा। सिर्फ लिखना है इसलिए मत लिखिएगा क्योंकि कोई नहीं देखने वाला, आपका उत्तर आप तक रहेगा, चाहे बाद में लिखिए लेकिन सोच के लिखिएगा इसको। चलिए बाद में करेंगे, अभी आगे बढ़े, आगे बढ़े अभी। ओके, तो एक बीच में एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस और बता देती हूँ। जब इस तरह का आप किसी को कोई एक्टिविटी करने के लिए देते हैं किसी भी ग्रुप में, क्योंकि जनरली इतने बड़े ग्रुप्स नहीं होते हमारे पास, छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो जब छोटे ग्रुप्स होते हैं तो उस समय पर कई ट्रेनर्स क्या करते हैं, कंटिन्यू कमेंट्री देते जाएंगे, ऐसा लिखना वैसा लिखना, बोलते जाएंगे, सामने वाला परेशान, अरे सोचने तो दो क्या लिखना है। तो कंटिन्यू कमेंट्री मत दीजिए, आप उनको शांति में 1 मिनट साइलेंस में इंट्रोस्पेक्ट करने का समय दीजिए। चाहे तो एक लाइट म्यूजिक लगा दीजिए हल्का सा, लेकिन कंटिन्यू कमेंट्री कभी मत देते रहिए, उनको सच में अंदर जाने का मौका दीजिए। जब तक आप बोलते रहेंगे वो अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि पहले ही वो आवाज की दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग्स में खास करके, कि उनको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए टाइम पे साइलेंस में चले जाइए आप भी। फिर ये चारों चीजों को आप जरूर निकालिएगा, इट विल वर्क। तो यहां पर भी वही बताया कि प्रायोरिटाइजिंग टास्क में क्या है, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको हम कैटेगराइज करें जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें। ये एक छोटी सी एक्टिविटी अभी आपके सामने आ रही है, इसमें आपके सामने 14 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपको उसको आंसर करना है। डायरी पेन सबका रेडी है? डायरी पेन रेडी है सबका? ओके, तो आपको 1 मिनट का समय मैं दूंगी। ओके, इसमें है नहीं छोटी सुई, ओके चलिए अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी और इस 1 मिनट में आपको उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. क्लियर है? क्लियर है? स्लाइड चालू करूं? हाँ जी तो बोलिए. हाँ जी ओके स्टार्ट कीजिएगा. क्लियरली दिख रहा है? जिसका हो जाएगा वो हाथ खड़े कीजिएगा. जिसका होता जाए हाथ खड़ा करते जाइएगा. आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, फोटो की बजाय काम कीजिए. लगभग 15 सेकंड और हैं आपके पास. ओके स्टॉप स्टॉप. किस किस का हुआ? अच्छा आपके पास डायरी पेन है? है ओके. तो आपने क्या आंसर लिखा सच्चा? लिखा ओके. किसी को समझ आया कि हुआ क्या आप लोगों के साथ? अच्छा दो दीदियों को समझ में आया. और किसी को समझ में आया क्या हुआ आपके साथ? बताइए क्या हुआ. आपने क्या किया? वहां पहुंचने के बाद समझ में आया है ना. देखिए इस स्लाइड को भी दोबारा ध्यान से देखिए. ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है? रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली बिफोर आंसरिंग देम. इस पूरे को ढंग से पहले पढ़िए उत्तर देने से पहले. लेकिन हम सभी बहुत होशियार आत्माएं हैं. हमने क्या किया? क्या किया? हम सभी बहुत समझदार हैं. मेरा नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा फलाना ये है, सब कुछ लिखना शुरू किया. और फाइनली अगर आप देखें तो 12वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए. आपको सिर्फ पहले और दूसरे का आंसर देना था, बाकी छोड़ दीजिए. लेकिन हमने क्या किया? 11 तक उत्तर दिए और फिर जाकर के पढ़ा. इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्या कहते हैं उसको? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट वो होता जो सच में उसको पहले पढ़ता और उसको फिर फर्स्ट और सेकंड का आंसर देता, जो सिर्फ एक ही बहन ने किया. सूचना को पढ़ो. हमने क्या किया? पूरा पढ़े बिना पहले ही उसके ऊपर सब कुछ कर दिया और बाद में जाके कह रहे अच्छा ये करना था क्या. तो हमें अपने आप को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के लिए समझना जरूरी है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको हम क्लियरली फॉलो भी करें. नहीं तो सच में हमारा टाइम अभी ये 1 मिनट भी वेस्ट जाता. 5 सेकंड में हो सकता था लेकिन हमने उसके लिए 1 मिनट तो वेस्ट कर ही दिया. तो वेस्ट ऑफ टाइम कहाँ हम कर रहे हैं? जहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम है. जैसे अभी हुआ, ऑलरेडी ऑलरेडी हुआ. कॉन्सेंट्रेशन कहाँ था? बस करना है, टारगेट पे था. लेकिन टारगेट को भी अचीव कैसे करना है वो हमने नहीं सोचा और हमने करते चले गए. तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सेकेंड जो हम सबके साथ कभी ना कभी होता है, सर्चिंग फॉर थिंग्स, सर्चिंग फॉर पेपर, सर्चिंग फॉर थिंग्स. होता है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताइए किसके साथ होता है. सामान कहीं रखते हैं, ढूंढते कहीं और हैं. होता है? हाँ हाथ खड़ा कर सकते हैं. सबके साथ होता है कभी ना कभी. हाँ अब हो रहे हैं. हाँ अच्छा. जाना कहीं होता है, जाते किसी और कमरे में है. कभी कभी होता है. हाँ हो रहे हैं हाथ खड़े, हो रहे हैं. और वहां जाके सोचते हैं अरे यहां थोड़े ना जाना था, वहां जाना था, तो दूसरे कमरे में जा रहे हैं. कितनी बार ऐसा भी कईयों के साथ होता है, फ्रिज खोल करके खड़े हैं और देख रहे हैं निकालना क्या था. ये होता है? ये होता है. अच्छा फोन लगाया और ये भूल गए लगाया किसको था. कई बार तो सामने वाला हेलो बोल रहा है और हम देखते अच्छा हाँ 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 आपको लगा है, अच्छा हो रहा है ये सब कुछ। तो अभी क्या कहें, आप सभी बुजुर्ग हो गए हैं। पहले कोई किसी के साथ ऐसा होता था तो सीधा क्या कहते थे, बुजुर्ग हो गया ना, याददाश्त खराब हो गई है। अभी क्या कहें आपके लिए, हम भी हैं उसमें थोड़ा थोड़ा। अच्छा किसी के साथ ऐसा होता है क्या कि कोई चीज रखी, किसी ने कहा ये चीज को ना संभाल के रखना, और उसको ऐसा संभाला, कभी कभार हुआ है, कभी कभी हुआ हो, अब नहीं होता, कभी हुआ हो, ऐसा संभाला कि अब जब व्हाइट वॉश होगी ना घर की तभी वो निकलेगी, या मकान चेंज होगा तभी मिलेगा। अब वो हुआ ऐसा कभी ना कभी ना। अब बोला क्या कहा था, संभाल के रखना। हमने इतना संभाला, ऐसा अच्छा संभाला कि अब किसी और की नजरें तो छोड़ो, मेरी नजर भी उसे ढूंढ नहीं पाएगी। कितना बढ़िया बात है ये। क्या कहेंगे हम, बुजुर्ग हो गए? हाँ जी या ना जी? नहीं तो फिर क्यों हो रहा है हमारे साथ? ऊपर वाला पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी बात जो हम दुनिया में लोगों को सिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने की जरूरत है, कि हमारे थॉट्स का इतना ट्रैफिक है कि हम उसको स्पेस नहीं दे पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो करने जा रहे थे, करते करते बीच में किसी ने कुछ बोल दिया, वो याद रह गया, जो करने जा रहे थे वो भूल गया। इसका मतलब थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था, और थोड़ा सा क्या था, जो इतना ट्रैफिक चीजों का, बातों का हमारे दिमाग में भरा हुआ है, वो हमें याद रखने नहीं दे रहा। और अगर बार बार ये होगा तो क्या होगा, टाइम खराब होगा या नहीं होगा? बार बार होगा तो टाइम खराब होगा, और सामने वाला इरिटेट भी होगा हमसे। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है कि हम अपने टाइम को सेव करें, किल नहीं करें। तो है, अभी और भी स्लाइड्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, लेकिन अब क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है और इसके बाद फिर आशा दीदी भी आने वाले हैं, तो हम इसको यहीं पूरा करते हैं। बाकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको जरूर आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसका आप 2-3 घंटा का भी कोई आपको बोला तो आप कंफर्टेबली सेशन को करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ओम शांति।